अगला टॉपिक देखेंगे और टॉपिक का नाम है उम्मते मुस्लिमा की ताकत, फिर स्लैश डालेंगे इत्तेहाद। मतलब क्या है इस टॉपिक का कि उम्मते मुस्लिमा की ताकत हथियारों में नहीं, वेपन्स में नहीं, एटॉमिक एनर्जी बनने में नहीं, बल्कि मुसलमान एक ताकत कब बनेंगे जब उनमें इत्तेहाद आएगा। कुरान पाक में तकमीले दीन की आयत के तहत इरशाद हुआ कि आज कुफ्र करने वाले लोग तुम्हारे दीन की तरफ से मायूस हो गए, अब तुम इनसे ना डरो बल्कि सिर्फ मुझसे डरो। सूरत माईदा की आयत नंबर 3 का ये एक हिस्सा है। ये आयत हजतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में नाजिल हुई। इसके तकरीबन 2.5 माह यानी 2 माह और 15 दिन के बाद तकरीबन 81 दिन का आता है लफ्ज़ रिवायात में, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल हो गया। इस लिहाज से इस आयत का मतलब ये हुआ कि रसूल और अस्हाबे रसूल की जिद्दोजहद के बाद इस्लाम की तारीख जहाँ पहुँच चुकी है वो इतनी मजबूत है कि अब इस्लाम अब अपनी ज़ाती बुनियादों पर कायम हो गया है। अब इस्लाम बैरूनी खतरात की जद से निकल गया है। अब इसके लिए ख़तरा हो सकता है तो अंदर की तरफ से है, ना कि बाहर की तरफ से। बहुत गहरी बात है। यानी जब हज्जतुल विदा के मौके पे यह आयत नाजिल हो गई कि अब दीन पूरा हो गया और अब नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम मुसलमानों से मायूस हो गए हैं और उनसे डरने के बजाय सिर्फ़ अल्लाह से डरना है, इससे क्या पता चला कि इस्लाम की जो खूबसूरत तरीन शक्ल बननी थी वो बन चुकी, मुसलमानों की ट्रेनिंग हो चुकी। अब अगर इस्लाम को कहीं से ख़तरा होगा तो वो अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। और ये बात तारीख़ में साबित शुदा है कि जहाँ भी इस्लाम को या मुसलमानों को नुकसान पहुँचा वहाँ बाहर वालों से ज़्यादा अंदर वालों की कोशिशें थीं। ये आयत उम्मते मुस्लिमा के लिए अल्लाह का खुला हुआ वादा है कि अब इसके लिए डरने की बात नहीं है। यानी अब इसके लिए ये बात तशवीश के काबिल नहीं कि इसके ऊपर इसके दुश्मन गलबा पाएंगे, बल्कि तशवीश की बात यह है कि उम्मत के अफराद में अल्लाह का डर बाकी न रहे। अब देखिए कि आयत के आखिर में आता है ना, फत्तकूनी, बस मुझसे डरो। तो इससे पता चलता है कि जब उम्मते मुस्लिमा में अल्लाह का डर बाकी ना रहे, ये चीज़ फ़िक्र की है। इस पे खौफ आना चाहिए कि न जाने क्या होगा और दुश्मन हमारे ऊपर गालिब ना आ जाए। इसके अलावा मुसलमानों को किसी और चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मुसलमानों के लिए कमज़ोरी की बात खौफे खुदा का ना होना है, ना कि किसी बैरूनी कुव्वत के मुकाबले में इनका कमज़ोर होना। ये इतकादी बात नहीं है बल्कि मालूम हकायक पर मबनी बात है। मुसलमानों के मामले को अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया कि ज़मीन के बड़े रकबे पर इनका कब्ज़ा हो गया। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इस अंदेशे से बाहर निकल गए कि महज तादाद की कमी की वजह से वो किसी के मुकाबले में शिकस्त खा सकें। इनके पास बेहतरीन इक्तसादी खत्ते हैं, यानी ऐसी जगह हैं कि जहाँ तेल भी है और कुदरती ज़राए मौजूद हैं माल कमाने के। इंतहाई अहम फ़ौजी मकामात पर इनका कब्ज़ा है। हर किस्म की सलाहियतों वाले अफराद रात दिन इनके यहाँ पैदा हो रहे हैं। इनको एक ऐसी किताब हासिल है जो इनको सारी दुनिया में फ़िक्री बरतरी अता कर सके। इनकी तारीख इतनी शानदार है जो क़यामत तक इनकी नस्लों को जोश और वलवले की खुराक देने के लिए काफ़ी है। जिस कौम के पास बरतरी के इतने असबाब जमा हो जाएं, बाहर की कोई कौम इसको जेर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मगर ये कि इसने अपनी हमाकत से अपने आप को कमज़ोर कर लिया हो, और ये हमाकत दरअसल अंदरूनी इख्तलाफ है। कौम के अफराद जब अल्लाह से डरने वाले हों तो वह एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं, वो इंसाफ के साथ एक दूसरे के हकूक अदा करते हैं। पूरा मुआशरा हसद और बुग़्ज़ की नफ्सियात से पाक होता है, और जिस मुआशरे का ये हाल हो इसमें बाहमी इत्तेहाद के सिवा क्या चीज़ जन्म पाएगी। इसके बरक्स जब कौम के अफराद अल्लाह से बेखौफ हो जाएं, तो हर एक दूसरे की काट में लग जाता है, हर आदमी खुद गर्जी के खौल में सिमट जाता है। बदख्वाही انتقام اور حسد سے پورا معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر اتحاد کی فضا پیدا کرتا ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ سے نڈر ہو جانا اختلاف پیدا کرتا ہے، اور جو قوم باہمی اختلافات کی شکار ہو جائے وہ لازماً کمزور ہو جاتی ہے، خواہ اس کی تعداد بظاہر کتنی ہی زیادہ ہو۔ تو کیا بات واضح ہوئی کہ اللہ کا ڈر امت مسلمہ کے اتحاد کی وجہ ہے، اور اتحاد امت مسلمہ کی طاقت ہے۔ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمز کے پاس ریسورسز نہیں، ان کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے ملک ایسے ہیں، بجلی پانی نہیں، اور سو آن۔ اور دیکھے جائے تو ظاہری نگاہ سے یہی دکھتا ہے، لیکن ذرا سوچئے کیوں؟ کیا ہماری زمینوں نے پھل اور سبزیاں اور غلہ اگانا چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ آج بھی مسلمان ملکوں کی زمینیں بڑی زرخیز ہیں۔ کیا پانی خشک ہو گیا؟ پانی بھی موجود ہے، سمندر بھی موجود ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج کیوں ہمارا حال خراب ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، اور اتحاد نہیں رہا اس کی وجہ کہ اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر اس ٹاپک میں سے ایک چیک لسٹ بنائیں تو چند پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ کیا مجھے یقین ہے کہ کافر مسلمانوں سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا مجھے اس بات کا شعور ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کے ڈر یعنی پیئر پریشر میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں ایک رہیں گے وہ دشمن پر غالب رہیں گے؟ کیا میں آج مسلمانوں کی کمزوری کو خدا خوفی کی کمی کا نتیجہ سمجھتی ہوں؟ کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آج بھی مسلمان بیرونی قوتوں کی بجائے اندر کے انتشار کی وجہ سے کمزور ہے؟ کیا آج بھی میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں تو ان کی زمینیں سونا اگلیں اور آسمان ان پر رزق برسائے؟ کیا ہم مسلمان معاشروں کو حسد اور بغض سے پاک کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے میں میرا کیا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے والا بنا دے، اور کچھ ایسے کام ہم کر جائیں کہ جس سے امت کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ بات جو واقعی مسلمانوں کی اس وقت کی ضرورت ہے، اور جب لوگ واقعی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ مان جاتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ دو مسلمان مل کر ایک کام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کسی وجہ سے دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر دونوں خاموشی سے اپنے کام کو الگ کر لیں اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے الگ الگ میدان تلاش کر لیں تو اس سے معاشرے میں کوئی خرابی یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگ جائے تو دونوں کے تعلقات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، جو بالآخر معاشرے کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاں نکاح کا پیغام دیتا ہے، دوسرا مسلمان کسی وجہ سے پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب اگر پہلا مسلمان اس سے کوئی برا اثر نہ لے اور اپنے لیے کوئی دوسرا رشتہ ڈھونڈ لے تو معاشرہ کسی خرابی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اگر پہلے مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھے، وہ اس کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرے اور اس کی بربادی کے منصوبے بنائے تو دو مسلمان خاندان نامعلوم مدت کے لیے ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، اور نتیجتاً پورے معاشرے میں بگاڑ پھیل جائے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عمارت میں کرائے دار ہے، مالک مکان کو کرائے دار سے کوئی شکایت ہو گئی۔ اب اگر مالک مکان وسعت ظرفی کا طریقہ اختیار کرے تو دونوں کے تعلقات میں کوئی بگاڑ نہیں آئے گا، اور ملت کا اتحاد بدستور قائم رہے گا۔ اس کے برعکس اگر مالک مکان یہ کرے کہ کرائے دار کو اکھاڑنے کے لیے اس کو بدنام کرے، اس کے خلاف تخریبی منصوبے بنائے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، तो ये मिल्लत के किले में नकब लगाने के हम मानी होगा। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ लोग किराएदार का साथ देंगे और कुछ लोग मालिक मकान का। मिल्लत दो जत्थों में बट जाएगी। मिल्लत की जो ताकत मिल्लत की तरक्की और इस्तेहकाम में लगती, वो मिल्लत की बर्बादी में सर्फ होने लगेगी। ये चंद मिसालें हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि किस तरह मिल्लत के अफराद एक रवैया अख्तियार करके अपने आप को ताकतवर बनाते हैं और दूसरा रवैया अख्तियार करके अपने आप को और बिलाखर पूरी मिल्लत को कमज़ोर करने का सबब बनते हैं। इस किस्म की तमाम कमज़ोरियों की वाहिद वजह अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होना है। अगर इंसान अल्लाह से डरे तो वैसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से नहीं निकालेगा जो अल्लाह के हाँ बेकीमत हो जाने वाले हैं। वो ऐसे अमल नहीं करेगा जो अल्लाह की मीज़ान में जुर्म साबित होने वाले हैं। हर इंसान अपनी गलती को तस्लीम करेगा, हर इंसान दूसरे को तकलीफ़ देने से बचेगा, और जिस मुआशरे में ये फ़िज़ा हो वहाँ लाजमन इत्तेहाद फ़रोग़ पाता है, और इत्तेहाद ही का दूसरा नाम ताकत है। इंसान दूसरे की बर्बादी के मंसूबे बनाता है, वो भूल जाता है कि इससे पहले कि दूसरे के ख़िलाफ़ इसके इरादे पूरे हों, खुद इसकी मौत का वक्त आ जाएगा। वो दुनिया से उठकर आखरत में पहुंचा दिया जाएगा। वहाँ इसको जवाब देना होगा कि अल्लाह ने जो कुछ इसको दिया था वो अल्लाह की अमानत था। इसको क्या हक था कि इनको खुदा के बंदों की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करे। हकीकत यह है कि इंसान अगर सिर्फ मौत को याद रखे तो वो इसकी इसलाह के लिए काफ़ी हो। यानी अपनी मौत यही है जो इंसान का किबला दुरुस्त करती है। अपने लिए ज़रा मुहासबे के नुकात नोट करते हैं। क्या जब किसी से इख्तलाफ राय हो जाए तो मैं फ़ौरन कटने की कोशिश करती हूँ? अलग होने के बाद अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए दूसरे फरीक को गलत साबित करने की कोशिश करती हूँ? क्या फिर मैं उसके साथियों को उससे काटने की कोशिश तो नहीं करती? अगर कहीं मैंने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करने का सोचा या फिर अपना ही, और वहाँ रिश्ता नहीं हुआ, तो क्या रिश्ता न देने वालों के लिए मेरे दिल में इतना इंतकाम उभरता है कि मैं उनको बदनाम करने लगती हूँ? अगर ज़िंदगी में मामलात के दौरान कहीं ना निभी तो क्या मैं दूसरे फरीक को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगती हूँ? क्या मैं अपने आप को तो मिल्लत के इंतशार का सबब नहीं समझती? क्या मुझे अपनी मौत याद है? क्या मैं अल्लाह की दीवी नेमतों को उसकी अमानत समझती हूँ? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इसलाह करने वाला बना दे। जितना इंसान अपनी मौत को सामने रखेगा उतना ही उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत आएगी और उतना ही वो अल्लाह ताला की नज़रों में मुकाम पाएगा। आप नोट कर रहे हैं, हर टॉपिक के अंदर से जो चीज़ निकलती है ना, वो मौत की याद और अल्लाह का डर है। बज़ाहर आप देखिए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को इज्तमाई लगती है, लेकिन आप पीछे देखेंगे ना तो इसका ताल्लुक भी फ़र्द के साथ है। तस्किया, बस दफ़ा आप देखिए कि ये सरासर दीनी मामलात लगते हैं ना, मिल्लत का बिगाड़, मस्जिदों में इख्तलाफात, मसलक की जंग, लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे तो इंसानों की नफ्सियाती कमज़ोरियाँ और अंदर ज़ात के बुत बने हुए दिखेंगे आपको। क्योंकि जो बंदा दीन की तरफ नहीं आता ना, वो तो बेचारा है ही एक दूसरे रास्ते का राही। उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा ही मालूम हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग जो कई सालों से दीन के साथ जुड़े होते हैं ना, उनके अंदर से भी कुछ चीज़ें नहीं खुर्ची जाती। तो अल्लाह ताला ये काम हमसे करा ले और हम अपनी ज़ात का भी तस्किया कर सकें और दूसरों का भी तस्किया कर सकें। अगला टॉपिक हम देखेंगे इस सिलसिले में, इसका नाम है खुदा की मदद उठ जाती है। मुझे तो ये टॉपिक पढ़ते हुए इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि जब किसी काम से अल्लाह की मदद उठ जाए तो क्या वहाँ फतह हो सकती है, कामयाबी हो सकती है? चाहे वो दीन का काम है या दुनिया का काम है या वो किसी शैतान के मंसूबे को कामयाब करवाने वाला कोई प्रोजेक्ट है, हर जगह काम तभी होगा जब अल्लाह की मदद आएगी। आप कितने ही ज़्यादा क्यों ना खूबियों के मालिक हों, स्किल्स के मालिक हों, एक्सपीरियंस्ड हों, तजुर्बाकार हों, बहुत सारे लोग आपके साथ हों, लेकिन याद रखिए किसी जगह भी कामयाबी के लिए अल्लाह की मदद लाजिम है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह की मदद कब उठ जाती है। एक हदीस है इस टॉपिक की बुनियाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह हदीस कुदसी है, कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं दो शरीकों के साथ तीसरा होता हूँ जब तक उनमें का एक साथी दूसरे साथी के साथ खयानत ना करे। हदीसे कुदसी क्या होती है कि अल्फाज भी अल्लाह ताला ही के होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा करवाई जाती है। अब इस हदीस का क्या मतलब है कि दो शरीकों में तीसरा अल्लाह होता है जब तक कि वो आपस में खयानत ना करें? इससे पता चलता है कि जहाँ भी दो लोग मिलके किसी काम का बेड़ा उठाएं, जो चीज़ अल्लाह की मदद लाएगी वो सिंसियरिटी है, अमानत का पास, जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह पूरा कर सकें। कोई गिरोह उस वक्त तक अल्लाह की मदद का मुस्तहिक रहता है जब तक इसके अफराद बाहम एक दूसरे के खैरख्वाह हों। इसके बरक्स जब वो एक दूसरे के बदख्वाह बन जाएं, जब इनके दरमियान खयानत की फ़िज़ा पैदा हो जाए, तो अल्लाह की मदद इनसे उठ जाती है। इससे ये भी मालूम हुआ, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का मेयार बंदों से ताल्लुक़ है। अगर अल्लाह ताला के साथ किसी का ताल्लुक़ दुरुस्त है, तो लाजिमन बंदों के साथ भी इसका ताल्लुक़ दुरुस्त होगा। जिसका ताल्लुक़ बंदों के साथ दुरुस्त ना हो, समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ भी इसका ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं, ख्वाब व बज़ाहर कितना ही ज़्यादा अल्लाह की बातें करता हो। कितनी बड़ी बात है, यानी बंदों के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है ना, असल में ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है। देखिए, दिन में ये जो 5 बार की जमात की नमाज़ है ना, ये यही सिखाती है, दो ताल्लुकात के बीच की एक डोरी है। बज़ाहर नमाज बंदा रब के साथ ताल्लुक़ की रिवाइवल के लिए पढ़ता है, तजदीद ईमान के लिए पढ़ता है, लेकिन वहाँ कंधे से कंधा जोड़ के और कदम से कदम जोड़ के जब खड़ा होता है, तो इस बात का भी इजहार करता है कि अल्लाह के बंदों के साथ भी मेरा मामला मोहब्बत वाला है, मैं अपने आप को बड़ा समझ के उससे कट के दूर नहीं हो जाता। खयानत किसको कहते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। खयानत का असल मफहूम एतमाद में पूरा ना उतरना है। अरबी ज़ुबान में कहते हैं खानहु सैफहु, यानी तलवार उचट गई, यानी तलवार मारने से जो उम्मीद की थी वो पूरी नहीं हुई। तो क्या पता चला कि जब कोई उम्मीद पे पूरा ना उतरे तो गोया कि उसने खयानत की। जब भी दो आदमी मिलते हैं, ख्वाह वो मालिक और मुलाजिम की हैसियत से मिलें या ताजिर और गाहक की हैसियत से, वो मालिक मकान और किराएदार की हैसियत से मिलें या दोस्त और मुआवन की हैसियत से, ख्वाह जिस हैसियत से भी एक शख्स का साथ दूसरे शख्स से पड़े, दोनों एक खामोश अहद में बन जाते हैं, हर एक का दूसरे के ऊपर कुछ हक कायम हो जाता है। ये हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ ख्वाह वो लिखी हुई हों या बग़ैर लिखी हुई, हर हाल में इनकी पाबंदी ज़रूरी है। इन हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को निभाने का नाम अमानत है, और इनको ना निभाने का नाम खयानत। इज्तमाई ज़िंदगी में जब भी इस किस्म की खयानत की जाएगी, तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि वहाँ नफ़रत, बेएतमादी, एक दूसरे की काट और तखरीबी कार्रवाइयाँ जन्म लेंगी। वहाँ हर तरफ मनफी नफ्सियात की फ़िज़ा पैदा होगी, और जहाँ मनफी नफ्सियात की फ़िज़ा हो, वहाँ शैतान का राज होता है। खुदा और उसके फरिश्ते ऐसी फ़िज़ा में कभी बसेरा नहीं लेते। यानी जहाँ भी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, वहाँ फिर अल्लाह की मदद उठ जाती है। तो लिहाजा हम सब चाहते हैं अगर कि हमारे इनफरादी और इज्तमाई कामों में मदद आए अल्लाह की, हमारे तालीमी और हमारे तदरीसी मामलात में अल्लाह की मदद आए, हमारे सियासी और हमारे माशरती मामलात में अल्लाह की मदद आए, तो हर मुमकिन तक सिंसियर रहने की ज़रूरत है। जितना इखलास अंदर आएगा, उतनी अल्लाह की मदद ज़्यादा आएगी, और हम अपने आप को भी इस टॉपिक की रोशनी में चेक कर सकते हैं कि क्या मैं जिनको एतमाद दिलाती हूँ उनके एतमाद पे पूरा भी उतरती हूँ, क्या जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं मैं दिल से उनकी खैर ख्वाह हूँ, क्या मैं अंदर से किसी की जड़ें तो नहीं काटती, کہ اللہ کے ساتھ تعلق درست کرتے کرتے بندوں کے ساتھ بھی تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں ہر رشتے میں اور ہر حیثیت میں اپنے آپ کو ذمہ دار اور اعتماد پر پورا اترنے والا شخص بنانے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں اجتماعی معاملات میں خیانت کی مرتکب تو نہیں ہوتی؟ کیا میں نفرت، بے اعتمادی اور دوسرے کی کاٹ اور تخریبی کاروائیوں کو جنم لینے میں مددگار تو نہیں ہوں؟ کیا میں منفی نفسیات کی مالک تو نہیں ہوں؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں سے غلط رنگ لے لیتے ہیں، خامیاں ان کو بہت دکھتی ہیں اور خوبیاں نہیں دکھتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے منفی رویے سے محفوظ رکھے اور ہم امت کے اتحاد کے اندر اپنے آپ کو اس طرح لگا لیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات پیچھے رہ جائیں اور دین کے اور اسلام کے بڑے بڑے معاملات آگے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیز قبول فرما لے.